ತಸ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.
ಜೀವನ ಆಪ್ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಸ್ ಜೀವನ ಇಸ್ ಸಮಯ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ ಇಸ್ ಪರ್ ಆಪ್ ಕಭಿ ಗೌರ್ ಕರೇ ತೋ ಆಪ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಆಪ್ ಕಿಸ್ ಬಿರಾದರಿ ಮೇ ಪೈದಾ ಹುವೆ ಹೈ, ಆಪ್ಕಾ ಘರ್ ಕಾ ಮಕಾನ್ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ, ಆಪ್ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಪಡೆ ಹುವೆ ಹೈ, ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕಿತನಾ ಕುಟುಂಬೀ ಹೈ, ಆಪ್ ಆಪ್ಕೋ ಸಫಲತಾ ಮಿಲಿ ಕಿ ನಹೀ ಮಿಲಿ, ಆಪ್ ಕೈಸಾ ಡಿವಿಜನ್ ಲಾಯೆ ವಗೈರೆ ವಗೈರೆ. ಜೊ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ ಹೈ ಇಸ್ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಕ್ಯಾ ಕರೇ, ಏಕ ಐಸಿ ಬಡಿ ಚೀಜ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಜಿಸ್ ನಿಯಾಮತ್ಕ್ಕೆ ಊಪರ್ ಆಪ್ ಬರಾಬರ್ ಗರ್ವ ಅನುಭವ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೈ. ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ವೋ ಹೈ ಇನ್ಸಾನಿ ಜಿಂದಗಿ. ಆದಮಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ಇತನಾ ಬಡಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಇಸ್ಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕತೆ, ಚೂಂಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಇಸ್ಕಿ ವಕ್ತ್ ನಹೀ ಸಮಝತೆ. ಆಂಖೇ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಪ್ ವಕ್ತ್ ನಹೀ ಸಮಝತೆ, ಪರ್ ಆಂಖೇ ಆಪ್ ಸೇ ಛಿನ್ ಜಾಯೇ ತಬ್ ತಬ್ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಅನುಭವ ಹೋಗಾ ಕಿ ಆಂಖೇ ಕಿತನಿ ಜರೂರಿ ಔರ್ ಕಿತನಿ ಅಚ್ಛಿ ಚೀಜೇ ಹೈ. ಆದಮಿಕೋ ಜೊ ಮಿಲಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಆಮತೌರ್ ಸೇ ಆದಮಿ ಸಮಝ ನಹೀ ಪಾತೆ, ಜಬ್ ಹಾಥ್ ಸೇ ಛಿನ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಅಥವಾ ಜಬ್ ನಹೀ ಮಿಲಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತಬ್ ಉಸ್ಕೇ ಲಿಯೇ ತರಸ್ತೇ ರಹತೇ ಹೈ. ಶಾದಿ ಆಮತೌರ್ ಸೇ ಭಾರಿ ಮಾಲೂಮ ಪಡತಿ ಹೈ, ಸಾಹಬ್ ಬೀವಿ ಆ ಗಈ ಹೈ, ಖತನಾ ಖರ್ಚಾ ಬಢ ಗಯಾ, ಝಗಡಾಲು ಸ್ವಭಾವ ಕಿ ಹೈ, ಯೇ ದಿಕ್ಕತ್ ವೋ ದಿಕ್ಕತ್. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಬೀವಿ ಛಿನ್ ಜಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ ಅಕೇಲೇ ಖಾನಾ ಪಕಾತೇ ಹೈ, ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಪಾಲನ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನೇ ಕಂಧೇ ಪೇ ಆತಾ ಹೈ, ತಬ್ ಆಪ್ ಸಮಝತೇ ಹೈ ಕಿ ಬೀವಿ ಕಾ ಕಿತನಾ ಮಹತ್ವ ಥಾ. ಆಪ್ಕೋ ಜಿಂದಗಿ ಛಿನ್ ಜಾಯೇ ಉಸ್ ಸಮಯ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಪತಾ ಚಲೇ ಕಿ ಹಮಕೋ ಕಿತನಿ ಬಡಿ ನಿಯಾಮತ್ ಮಿಲಿ ಹುಯಿ ಥಿ, ಇಸ್ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಯೇ ಜ್ಯಾದಾ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಸಮಯ ರಹತೇ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಅಂದಾಜ ಲಗಾ ಲೇ ಕಿ ಹಮಕೋ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಐಸಾ ಉಪಹಾರ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಾರೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಣಿಕೋ ಪದೇ ತರಸನಾ ಪಡತಾ ಹೈ, ತರಸನಾ ಪಡತಾ ಹೈ. ಆದಮಿಕೋ ಬೋಲ್ನೆ ವಾಲಿ ಜಿಂದಗಿ, ಸೋಚನೆ ವಾಲಿ ಜಿಂದಗಿ, ಪಢನೆ ಲಿಖನೆ ವಾಲಿ ಜಿಂದಗಿ, ಜೀವಿಕಾ ಕೇ ಲಿಯೇ ಕೋಯಿ ಏಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಕೋಯಿ ಸೂತ್ರ, ಖಾನೆ ಪೀನೆ ಕಾ ನಿಯತ ಸಮಯ, ವಸ್ತುವೋ ಕೇ ಲಿಯೇ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸೋನೆ ಜಾಗನೆ ಕಾ ಕ್ರಮ, ಪಹನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ವಸ್ತ್ರ, ರಹನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿ, ಕಾಮ ಜೀವಿಕಾ ಉಪಾರ್ಜನ ಕರ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಕೋಯಿ ನಿಯತ ಸ್ಥಾನ ವಗೈರೆ ವಗೈರೆ. ಇಸ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೇ ಅಗರ್ ಆಪ್ ದೇಖೇ ತೋ ಯೇ ಮಾಲೂಮ್ ಪಡೆಗಾ ಕಿ ಆಪ್ ದೂಸರೆ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕಿ ತುಲನಾ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ಔರ್ ದೂಸರೆ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಜಮೀನ್ ಆಸಮಾನ ಜೈಸಾ ಫರ್ಕ್ ಹೈ. ಆಪ್ಕೋ ಜೊ ಸುವಿಧಾ ಮಿಲಿ ಹೈ ವೋ ಕಹಾಂ ಮಿಲಿ ಹೈ, ದೂಸರಾ ಪ್ರಾಣಿ ಬತಾಯಿಯೇ ನಾ ಮನುಷ್ಯ ಕೇ ಅಲಾವಾ ಕೌನ್ ಸಾ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಕಪಡೇ ಕೌನ್ ಪಹನತಾ ಹೈ, ಶಾದಿ ವಿವಾಹ ಕಿಸ್ಕೆ ಹೋತೇ, ಕುಟುಂಬ ಬನಾ ಕರ್ಕೆ ಕೌನ್ ರಹತಾ ಹೈ, ದವಾ ದಾರು ಕಾ ಇಂತಜಾಮ ಕಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಹೈ, ಬೋಲ್ನಾ ಕಿಸ್ಕೋ ಆತಾ ಹೈ, ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಪಡ್ ಸಕತಾ ಹೈ ವಗೈರೆ. ಆಪ್ಕೋ ಇತನಿ ಸುವಿಧಾ ಮಿಲಿ ಹುಯಿ ಹೈ, ಆಪ್ ಕಭಿ ಏಕಾಂತ ಮೇ ಬೈಠ ಕರ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕರೇ ತೋ ಮಾಲೂಮ್ ಪಡೆಗಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜೊ ಕುಛ್ ಭೀ ಸಬ್ಸೆ ಕೀಮತಿ ಚೀಜ್ ಥಿ ಆಪ್ಕೆ ಸುಪುರ್ದ ಕಾ ದಿಯಾ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಖಜಾನೆ ಕೋ ಆಪ್ ಜಾಕರ್ ಕೆ ಕಭಿ ದೇಖೇ ಔರ್ ಯೇ ತಲಾಶ್ ಲೇ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬೆಹತರೀನ್ ಚೀಜ್ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕೋ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಥಿ, ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಏಕ್ ಹೀ ಬಾತ್ ಕಾ ಪತಾ ಚಲೇಗಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಸಬ್ಸೆ ಕೀಮತಿ ದೌಲತ್, ಸಬ್ಸೆ ಕೀಮತಿ ನಿಯಾಮತ್, ಸಬ್ಸೆ ಕೀಮತಿ ಸಂಪದಾ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ ತೋ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಅಗರ್ ಜಿಸ್ಕೋ ಆದಮಿಕೋ ಮಿಲ್ ಗಈ ಸಮಝನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಹೋಗಾ. ಇಸ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೋಯಿ ಐಸಿ ಚೀಜ್ ನಹೀ ಹೈ ಜೊ ಕಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಕೋ ದೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ನಿಹಾಲ್ ಕರ್. ಆಪ್ ನಿಹಾಲ್ ಹೋಗೇ ಇಸ್ ಜಿಂದಗಿ ಕೋ ಆಪ್ ಸಮಝಿಯೇ, ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸಮಝಿಯೇ, ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸಮಝಿಯೇ. ಕಲ್ಪನಾ ಕೀಜಿಯೇ ಮೌತ್ ಆಯಿ ಔರ್ ಆಪ್ಕೆ ಹಾಥ್ ಸೇ ಜಿಂದಗಿ ಛೀನ್ ಲಿ ಗಈ, ಜೀ ಜಿಂದಗಿ ಛೀನ್ ಲಿ ಗಈ, ಛೀನಿ ಹುಯಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೋ ಆಪ್ ಪೀಚೇ ತೋ ಕೀಜಿಯೇ ಗೌರ್, ಕಿತನಿ ಕೀಮತಿ ಥಿ ಔರ್ ಜಬ್ಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಅಬ್ ನಹೀ ಮಿಲ್ನೆ ವಾಲಿ ಹೈ, ದೂಸರಿ ಯೋನಿಯೋ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ಗಧೆ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ಘೋಡೆ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ಬಂದರ್ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ಕಬೂತರ್ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ಚಿಡಿಯಾ ಮೇಢಕ್ ಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ತಬ್ ಆಪ್ ಜರಾ ಅಂದಾಜ ಲಗಾಯಿಯೇ ಆಪ್ಕೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ಕಿತನಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ಕಭಿ ಯೇ ಕೋಶಿಶ್ ನಹೀ ಕಿ ಇಸ್ಕಾ ಮಹತ್ವ ಸಮಝೆ ಔರ್ ಮಹತ್ವ ಸಮಝನೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಆಪ್ ಇಸ್ಕೋ ಠೀಕ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಯಾಂ ಕರೇ. ಆಪ್ ಇಸ್ಕಿ ತಯಾರಿ ಕೀಜಿಯೇ, ಮಹತ್ವ ಸಮಝಿಯೇ, ಇಸ್ಕೆ ಠೀಕ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನೆ ಕಾ ತಯಾರಿ ಕೀಜಿಯೇ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ತಯಾರಿ ಕರ್ನಿ ಹೋಗಿ, ಏಕ್ ತಯಾರಿ ಯೇ ಕರ್ನಿ ಪಡೆಗಿ ಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ನಯೇ ಢಂಗ ಸೇ ಜಿಂದಗಿ ಕೇ ಊಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕರ್ನಾ ಹೋಗಾ. ಕ್ಯಾ ಶುರು ಕರೇ, ಆಪ್ ಯೇ ಮಾನ್ ಕೇ ಚಲಿಯೇ ಜಿಂದಗಿ ಏಕ ಬಹುತ್ ಲಂಬಿ ಕಡಿ ಹೈ, ಏಕ ಲಂಬಿ ವಾಲಿ ಶೃಂಖಲಾ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಲಂಬಿ ಶೃಂಖಲಾ, ಬಹುತ್ ಲಂಬಿ ಶೃಂಖಲಾ, ಜಿಸ್ಮೇ ಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಲಾಖೋ ಜನ್ಮೋ ತಕ್ ಜಿಂದಾ ರಹನಾ ಥಾ, ಏಕ್ ಹೀ ಮೌಕಾ ಆಪ್ಕಾ ಐಸಾ ಹೈ ಜೊ ಮನುಷ್ಯ ಕೇ ಜೀವನ ಮೇ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ. आप जिस मनुष्य की जिंदगी में मिले हुए हैं आप उसके साथ में अपने भावी जीवन की संभावनाओं का विचार कीजिए। आज हर आदमी जो काम करता है कल का विचार करके ही तो करता है। आज जो आप काम कर रहे हैं कल के ख्याल से कर रहे हैं, कल क्या करना पड़ेगा। आज जो आपने नौकरी खेती बाड़ी की उसका मतलब तो यही तो है कि आपको कल का दिन गुजारा करने के लिए ठीक मिलेगा। मकान आप किसी लिए बनाते हैं? आज तो आप धर्मशाला में भी रह सकते थे, होटल में भी रह सकते थे, पर यही तो विचार करते हैं कल हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, बुढ़ापे में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारा कुटुंब कहाँ रहेगा। इसीलिए विचार करते हैं कल की संभावनाओं के लिए। आज की व्यवस्था बनाना हर एक आदमी का काम, हर समझदार आदमी का काम। आप एक लंबी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आप लंबी वाली ज़िंदगी जिए हैं तो आपको ये विचार करना पड़ेगा आपका कल शानदार किस तरीके से हो। कल की शानदार होने के लिए आज आपको क्या करना होगा, एक ही बात करनी पड़ेगी। आप अपनी प्रत्येक क्रियाकलाप में इस बात का समावेश करें कि हमारा कल भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो जाए। हम और आप में से अधिकांश लोगों में गलती यह है कि आज की बात को विचार करते हैं, कल की बात को विचार नहीं करते। कल क्या परिणाम निकलेगा इसको हम भूल जाते हैं। आज हमको किन बात में फ़ायदा है, बस इतनी बात पर हमारी दृष्टि सीमित रहती है, और जो आज हमको फायदेमंद मालूम पड़ता है उसी को करने पर आमादा हो जाते हैं, उससे भली से हमारा कल खराब होता हो। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कल के परिणामों पर हम ज़्यादा विचार करें और आज के अपनी गतिविधियों का निर्धारण इस तरीके से करें जिससे हमारा कल बहुत अच्छा बनता हो, शानदार बनता हो, अच्छा बनता हो। इसके लिए हम कोशिश करें तो हमारी हम ऐसी एक रीति नीति को अपनाने में समर्थ बन सकते हैं जो हमारे लिए हर तरीके से सुखदायक और शांतिदायक बन सकती है। आपको दूसरों से गौर करना चाहिए, जो आदमी तुरंत फायदे उठाने के लिए कोशिश करते हैं वो आपने देखे नहीं किस तरीके से हैरान होते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। अपराधियों को आप जानते हैं ना, शराबियों को आप जानते हैं ना, आलसियों को आप जानते हैं ना, फिजूल खर्चों को आप जानते हैं ना, ये कौन है? ये सब वो आदमी है जो आज की सुविधाओं को ध्यान देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होना है। शराबी इस समय के मज़े को देखता है और ये देखता है इस समय हमको कैसा जायका आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, ये भूल जाता है कल हमारा लिवर ख़राब होने वाला है, दिमाग ख़राब होने वाला है, ज़िंदगी में कमी होने वाली है, हमारी अकल ख़राब होने वाली है, हमारे कुटुंब की तबाही होने वाली है, हमारी बदनामी होने वाली है। ये कल तो होंगी ना, कल का कोई ख्याल ही नहीं आता। कल का ख्याल नहीं आता तब उसको शराब पीने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिसको कल का ख्याल है, अपने शरीर का ही ख्याल है, अपनी बदनामी का ख्याल है, अपनी आमदनी का ख्याल है, अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का ख्याल है, जैसे ही ख्याल आएगा फिर वो शराब पीने से एतराज़ करने लगेगा और छोड़ दे। दूरदर्शिता की कमी, दूरदर्शिता की कमी जिस आदमी में है वो सिर्फ आज की बात विचार करता है। अपराधियों के बारे में भी यही बात है, शराबियों के बारे में, जुआरी को आपने देखा है ना, चोरों को देखा है ना, इस समय हम फायदा उठा लेते हैं। अरे भाई इस समय तो फायदा उठा लेते हैं पर भविष्य तुम्हारा क्या बनेगा? दूसरा आदमी कौन सहयोग करेगा? दूसरा आदमी कौन अपने पास बैठने देगा? जहाँ कहीं भी किसी का सहयोग मांगने जाएंगे वो यही ख्याल तो करेगा ना कि चोर और उचक्का है, हमारे पास रहेगा, हमको हैरान करेगा, किसी न किसी तरीके से तंग करेगा। इसलिए अच्छा होते हुए भी, कुटुंबी होते हुए भी, मित्र होते हुए भी, अपने खानदान का और परिवार का होते हुए भी आदमी हर आदमी चाहता है ये किसी तरीके से काला मुंह करे और हमसे दूर चला जाए। क्यों, क्या वजह हुई? क्राइम, क्राइम आदमी के व्यक्तित्व को ख़त्म कर देता है। आमदनी क्या मिली क्या नहीं मिली मैं नहीं कहता आपसे, आपने जेब काट के क्या कमा लिया, चोरी बेईमानी से क्या 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 कमा लिया, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, पर आपने अपना भविष्य खराब कर दिया। अब आपको सहयोग की गुंजाइश नहीं। जब लोगों को ये मालूम तो पड़ेगा ही, छिपता तो नहीं है कि आप बुरे काम करने वालों में से हैं, तब फिर आप विश्वास रखिए ना आपके पास अच्छे ग्राहक आ सकते हैं, ना कोई आपको उधार देने को रजामंद हो सकता है, ना आपका कोई मुसीबत में सहकारी हो सकता है। अपराध का रास्ता इख्तियार करने के बाद में आपने कमाया होगा मैं नहीं कहता, लेकिन भविष्य अपना कितना ख़राब बना लिया। तब यही बात उसकी है। आप किसान को जानते हैं ना, विद्यार्थी को जानते हैं ना, माली को जानते हैं ना, कलाकार को जानते हैं ना, ये सब आदमी वो हैं जिनको कल का ख्याल रहता है, आज उनको नुकसान पड़ता है तो खुशी खुशी इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। किसान नुकसान उठाने को तैयार रहता है, आज बीज बो रहा है ना, आज मेहनत कर रहा है ना, आज खाद पानी सिर पर ढोकर के खेत में लगा रहा है ना, नुकसान के अलावा क्या है आप ज़रा बताइए तो सही। लेकिन उसको ख्याल है कि इसका कल से हमको अच्छी फसल मिल सकती है और हम अच्छा फायदा उठाएंगे, इसलिए आज की तबाही, आज का नुकसान, आज की मेहनत भली से उसका कोई मुनासिब फ़ायदा न मिलता हो तो भी बराबर करने के लिए तैयार रहता है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्या? आपको करना चाहिए। विद्यार्थी को आपने देखा है ना, विद्यार्थी किस तरीके से किताब पढ़ने में लगा रहता है, रात को जगता रहता है, फीस भी दाखिल करता है, स्कूल भी टाइम पर जा पहुंचता है, और आप उस आदमी को देखिए बच्चे को जो लावारिसियों के तरीके से घूमता रहता है, घर से पैसे ले जाता है फीस दाखिल करने के लिए, घर से किताब ले आता है पैसा किताबें खरीदने के लिए, न पैसा किताबें खरीदता है न फीस दाखिल करता है, आवारागर्दी में इधर का इधर घूमता रहता है। आज का जायका उठा लिया ना, हाँ, लेकिन आज का जायका उठा करके क्या फ़ायदा किया? कल का भविष्य खराब कर लिया ना, कल इस बेचारे का क्या होने वाला है? बिना पड़ा रह जाएगा, हर साल फेल होता रहेगा, बच्चों में बुद्धू और बेवकूफ़ समझा जाता रहेगा, सारे घर वाले उसके ऊपर हिकारत की दृष्टि से देखते रहेंगे, अंततः अपनी ख़राब ज़िंदगी को लेकर के किसी ऐसे बुरे लोगों की सोबत में जा फंसेगा जहाँ पर उसका भविष्य अंधकार में होता हो। ये कैसे हो गया? अदूरदृष्टता के कारण से। दूरदृष्टता अगर उस बच्चे में रही होती तो उसने ऐसे कदम न उठाए, तब उसने समझदार बच्चों की तरीके से दिन रात मेहनत की होती, अच्छा डिवीजन ले आया होता, अच्छा डिवीजन ला करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली होती, और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अलावा कोई ऐसा पद प्राप्त कर लिया होता जिससे सारी ज़िंदगी खुशहाली से बीत जाती। अदूरदृष्टता ही तो है ना जिसकी वजह से बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, अदूरदृष्टता तो ही है ना जिसकी वजह से शराबी तबाह हो गया, अदूरदृष्टता ही है ना जिसकी वजह से अपराधी ऐसा हो गया, और वो दूरदृष्टता ही है जिसकी वजह से पहलवान बन गया, जिसकी वजह से विद्वान बन गया, जिसकी वजह से धनवान बन गया। उन लोगों ने आज अपने आप को, मन को मारा, अपने आप को रोका, अपने आप को एक ख़ास मकसद में लगाए रखा और पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में अपने आप को किसी ख़ास काम में घुला दिया। घुला देने वाले वो आदमी जो भविष्य के बारे में विचार करते हैं बहुत समझदार मालूम पड़ते हैं। आपको भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, आपको इस ज़िंदगी का, आपका बुढ़ापा किस तरीके से शानदार बीते इसके लिए आपको जवानी की हिफाजत करनी चाहिए। आपके घर की आर्थिक स्थिति भविष्य में डगमगाने न पाए इसलिए आज से आपको अपनी किफायतशाही पर गौर करना चाहिए और अपने घर के रहन सहन के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में ठीक रखना चाहिए। बच्चे आपके भविष्य में इज्जत करें इसलिए आज आपको अपना तौर तरीके ऐसे बना के रखने चाहिए जिससे कि बड़े होने पर जब आप कमज़ोर असमर्थ हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब आपके जो बच्चे जो आज आपको बुरी काम करते हुए देखते हैं तब आपके ऊपर धिक्कारने न पाए, लानत पटकने न पाए। इसलिए आप अपने ढांचे को अभी से क्यों बदल लें? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भगवान के दरबार में पेश होना पड़ेगा, इस काम से आपका बचाव नहीं हो सकता। भगवान ने आप जिस दिन जन्मे थे बहुत कीमती शरीर दिया था और इस उम्मीद से दिया था कि आप इसका ठीक इस्तेमाल करेंगे और अपने आप का भविष्य उज्जवल बना लेंगे और उसकी शानदार दुनिया के लिए कोई सेवा करने में समर्थ हो सकेंगे। आप उसके इस विश्व उद्यान को सुरम्य और सुसंस्कृत बनाने में हिस्सा बटाएंगे। भगवान ने आपको दिया है, आप भगवान की दुनिया को देंगे, इस ख्याल से आपको जन्म दिया था। लेकिन जब आप धीरे धीरे मौत के नज़दीक जा रहे हैं और भगवान के दरबार में आपको पेश होने का मौका मिलने वाला है, तब आप ज़रा विचार तो कीजिए आप क्या जवाब देंगे। आप ये मत विचार कीजिए कि भगवान जी आपसे ये पूछने वाले हैं कि आपने कितने माला का जप किया था, कि किन किन तीर्थों में यात्रा की थी, क्या क्या कर्मकांड कराए थे, क्या कथा सुनी थी और क्या कही थी। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, या आपकी अपनी मन की हिफाजत के लिए और मन को ठीक रहने के लिए, भगवान से इनका कोई ताल्लुक नहीं। भगवान तो ने तो सिर्फ आपको एक चीज़ अमानत में दी थी और वो ज़िंदगी, और सिर्फ ज़िंदगी के बारे में वो आपको सवाल करने वाला है। जब आप जाएंगे तो एक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको जो बेशकीमती ज़िंदगी मिली वो आपने कहाँ खर्च कर डाली, किन किन कामों में खर्च कर डाली, आपको अभी से उसका जवाब तैयार कीजिए। आपके ये जवाब माकूल नहीं है, कि हमारे पास पेट के कमाने के लिए इतना काम था, कुटुंब को बनाने के लिए इतना काम था, इसीलिए हम सारी जिंदगी उस काम में लगे रहे, ऐसा ऐसा मत कहिए। आपके हाथ बहुत बड़े हैं और आपकी अकल बहुत बड़ी है और आपको कमाने के लिए बहुत से साधन समाज में मिले हुए हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं जरा बताना। मुट्ठी भर आवश्यकता, चार रोटी आप खाते हैं, चार रोटी तो आप दो घंटे की कमाई भी पूरा कर सकते हैं। आप तीन गज कपड़ा पहनते हैं ना, इसकी कितनी कीमत होती है। महीने भर में कितना खर्च करते हैं। आपकी व्यक्तिगत खर्च और आवश्यकताएँ बहुत कम हैं। आप फिजूल खर्चियों से बढ़ा डालें तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। फिजूल खर्चियों के लिए तो कोई रास्ता है, कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, आप चाहे इतना खर्च कर डालिए, लेकिन आपकी वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम है। कुटुंब का निर्वाह करना पड़ा। कुटुंब को अगर आप अपने स्वावलंबी बनाने और संस्कारी बनाने तक का अपना उद्देश्य सीमित रखा हो तो आपका कुटुंब पालन करने में जरा भी दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। कुटुंब में ऐसे ढेरों आदमी ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उन ज्ञान को करना चाहिए। मसलन आपकी धर्मपत्नी है, अच्छी खासी है ना, स्वास्थ्य उनका अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा उनका है तो खाना पकाने में क्यों आप सारे दिन लगाए रखें। थोड़े समय तक आप सब मिलकर खाना पका सकते हैं, बाकी समय में आप इस तरीके से उनको शिक्षा और संस्कारता पैदा कर सकते हैं जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, घर के लिए कुछ आर्थिक कमाई न कर सकती हो तो बचत कर सकें। खाना पकाना भी तो एक आमदनी है, कपड़े धोना और सीना भी तो एक आमदनी है, आपके घर में साग भाजी उगा देना भी तो आमदनी है। स्वावलंबन हुआ ना, स्वावलंबन की दृष्टि से आप घर के कई मेम्बरों को अगर इस लायक बना दें, बुढ़ों से भी कुछ काम करने की बात कहें, औरों से भी कुछ काम करने की बात कहें, हर आदमी ही एक आदमी कमाए सब बैठ के खाएं, ये बुरी बात है। हर आदमी को आप स्वावलंबन क्यों नहीं सिखा सकते। अगर आप इस तरीके से स्वावलंबन सिखाएं तब आपके ऊपर वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। आपको तो परिवार का पोषण इसलिए भारी पड़ रहा है कि आप अकेले कमा करके और सबको बैठ के खिलाना चाहते हैं, सबको निकम्मा बनाना चाहते हैं। अगर सारे कुटुंबियों को, जो छोटे बच्चों को छोड़ के जो समर्थ व्यक्ति हैं, किसी न किसी तरीके से किसी काम में लगाए रखने की बात का आप विचार कर लें तो आपको कुटुंब पालन में क्या दिक्कत पड़ सकती है। कुटुंब परिवार आपका भारी क्यों पड़ना चाहिए, आपको पेट भरने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। आप औसत नागरिक भारतीय की तरीके से अगर ज़िंदगी जिए और किफ़ायतशारी से रहें तो आप यकीन रखिए आप थोड़े में बहुत गुजारा कर सकते हैं और आपको सारी मुसीबतों से बड़ी आसानी के साथ में बचाव होना संभव है। भगवान के काम करने के लिए तो आपको ढेरों को ढेरों समय मिलना चाहिए। आपको अगर कोई पुरानी स्थायी आमदनी नहीं है तो 8 घंटे की मेहनत और मशक्कत करने के बाद में आपका गुजारा भली तरीके से हो जाना चाहिए। काम करने के घंटे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 8 घंटा अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक श्रम आजीविका के लिए निर्धारण। अगर आदमी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे तो 8 घंटे में गुजारा कर सकता है। फिर इसके बाद में 7 घंटे सोने को मान लीजिए। 7 घंटे से ज़्यादा सोने को बच्चों को भी जरूरत नहीं पड़ती। 7 घंटे फिर आपके लिए तो काफ़ी होने चाहिए। अगर समय ख़राब न करें तब 60 घंटा सोने के लिए और 7 घंटा सोने के लिए और 8 घंटा काम करने के लिए 15 घंटे हुए। 5 घंटे आप फालतू कामों के लिए रखिए। शौच स्नान और खाने में क्या देर लगती है। 1 घंटा मानिए सवेरे का, 1 शाम का मान लीजिए। ये तो काम दैनिक जरूरतों में और कौन सी है जरा बताना। 2-3 तो काम है, टट्टी जाना, नहाना, रोटी खाना, और कौन सा काम बताइए। ये इन कामों में 1-1 घंटा दो बार के लिए मान लें तो 2 घंटे हुए, 3 घंटे और फालतू कामों के लिए रख लीजिए। कभी क्या। इस तरीके से 5 घंटे आप दैनिक कार्यों में लगाने के बाद में आपको कुल मिलाकर के 20 घंटे अपने दैनिक कामों में और पारिवारिक कामों में खर्च करने के लिए काफ़ी होने चाहिए। इसके बाद में जो आपके पास 4 घंटे बचते हैं आप भगवान के कामों को कर सकते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी सार्थक मानी जा सके, जिससे आप भगवान के दरबार में जब कभी जाएं तो सीना तान के ये कह सकें हमने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और अपने परिवार का स्तर बढ़ाने के लिए और समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए कोई मूल्यवान काम किए। आप ऐसे कीजिए, भगवान के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए। अगर आपको उनको सही जवाब देने में समर्थ हो गए तो आप विश्वास रखिए अभी तो आपको सामान्य प्राणियों से मनुष्य का दर्जा मिला है, कल आपको महामानव का मिल सकता है, ऋषियों का दर्जा मिल सकता है, देवात्माओं का दर्जा मिल सकता है। आप स्वर्गीय जिंदगी अभी तो मानवीय गरिमा से लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में आपको स्वर्गीय जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। आप जीवन मुक्तों के में गिने जा सकते हैं। आप सारे विश्व में भगवान के उत्तराधिकारी और युवराज कहलाने की परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। कि कब पहुंच सकते हैं? आप जीवन का ठीक उपयोग करना सीख पाए तब। जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जिंदगी को महत्वहीन मत मानिए, जिंदगी को खंडित मत कीजिए। जिंदगी में आज का ही लाभों पर विचार मत कीजिए, भविष्य के लिए विचार कीजिए और ऐसे नीति अख्तियार कीजिए जिससे कि आपका न केवल आज का दिन शानदार बन सके बल्कि भविष्य का उज्जवल बनाने के लिए भी एक अच्छा खासा द्वार खुल सके। आप ऐसा कीजिए, जीवन का मत समझिए, जीवन का सदुपयोग कीजिए और भविष्य